हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने कहा ना बीच में आपको कि यहाँ पर राजारानी आके भोजन बनाती है, तो यशोदा माई ने खास रिक्वेस्ट किया था कीर्ति मैया से कि आपकी कन्या को भेजो यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कन्या को वरदान प्राप्त हुआ है, दुर्वासा मुनि से वरदान प्राप्त ये हुआ है कि इसके हाथ से जो भी भोजन बनेगा वो अमृत तुल्य होगा, अमृत ऐसा स्वादिष्ट होगा, और जो भी उसको खाएगा वो रोग से हमेशा मुक्त रहेगा, और तीसरा जो खाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा। तो ऐसे कन्या के खोज में तो यशोदा माई थी ना पहले से, तो इससे अच्छी कन्या और हमारी लाला के लिए कौन हो सकती है। लेकिन पहले अभी स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो फिर वो एक महोत्सव में गए और उन्होंने कीर्ति मैया से विनती की कि क्या आपकी कन्या हमारी लाला के लिए भोजन कर सकती है। उनके मन में भी यही बात थी, तो उन्होंने झट से हाँ कर दी। तो उस दिन से फिर राधा रानी यहाँ पर आकर कृष्ण के लिए भोजन बनाया करती थी। ऐसे कहते हैं यहाँ के लोग कि एक बंटा भोग होता है, बंटा भोग वो ना किससे किससे बनता है, वो गेहूं के आटे से, शक्कर तो होती है और क्या होता है, गेहूं का आटा खा लिया, बहुत विशेष तरीके से बनता है वो। आप कितना भी कोशिश करें कि बंबई बनाने का, तो वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि यही गोस्वामी जो अपने हाथ से यहाँ राधा रानी के भाव से बंटा भोग बनाते हैं, यही गोस्वामी हमारे घर पे रहने के लिए कई बार आए हुए हैं, और हमने उनको एक बार जिद किया कि आप वो बंटा भोग अपने हाथ से बनाओ, तो उन्होंने ही बनाया जो यहाँ बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं बना जो यहाँ बनता है, क्योंकि धाम का भी महात्म्य है ना, स्थान का महिमा भी होता है कि नहीं, थल महिमा। तो फिर वो बंटा भोग जो है वो भोजवासी कहते हैं कि राधा रानी कमरा कमरा भर के बनाती थी, रूम फुल, 3 डायमेंशनल, करोड़ों लड्डू बना के जाती थी कभी कभी, क्योंकि ये लड्डू जो है ना वो राधा रानी का बनाया हुआ, कृष्ण भगवान को दिन भर लगता है उसमें, तुलसी नहीं चढ़ती, दिन रात वहां पर रखते हैं वो, बदलते रहते हैं, रखते रहते हैं, क्योंकि कभी भी लाला नींद से उठेगा तो पहला मीठा मांगेगा, सामने होना चाहिए, और एक कपाट है वहां पर, उसको भी भर के रखते हैं लड्डू को। और आप जाएंगे ना अभी ऊपर, तो जो सखा है ना भगवान के, दो खड़े ना वो, धन सुखा मन सुखा, सिदामा मधुमंगल बाजू में खड़े ना, वो उनको कैसे भी रखेंगे ना, टर्न करके रखेंगे, राइट में घुमा के रखेंगे, लेफ्ट में घुमा के रखेंगे, कैसे भी खड़े करेंगे, फिर भी उनकी नजर आपको कबाड़ पर ही मिलेगी। आप देखो जाके, अभी जाके देखो वो कहाँ देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे, वो लोग कबाड़ की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उसमें लड्डू रखे हुए हैं बंटा भोग के। तो एनी वेज रोज रोज का देखना आना जाना, तो राधा रानी के विषय में उनको प्रेम बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। जो हमारी पसंद की वस्तु है उसको रोज देखते हैं तो उसका प्रेम जो है, आकर्षण आसक्ति बढ़ जाती है। एक दिन भाव विभोर होकर राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा देती है वो, और राधा रानी का एक तरह से वाग निश्चय होता है, तो फिर वहां पर भी हल्ला मचता है। तो वहां से गिफ्ट आती है मोतियों की, कि जो तुमने किया वो हमको पसंद है, जाने अनजाने में भाव में किया होगा लेकिन हम उसको राजी हैं उसके लिए। यहाँ पर ये चिंतित है कि भाव में आकर मैंने ऐसा काम किया तो वहां पर क्या बोलेंगे, यही आपका रिवाज है क्या, किसी की कन्या को बुलाने का किसी बहाने और उसका सगाई कर देने का अपने बच्चे के साथ। ये यहाँ पर चिंतित है कि क्या सोचेंगे कीर्ति माता और कृष्णमानु महाराज। लेकिन जब उनसे गिफ्ट आया, रिटर्न गिफ्ट, तो वो थोड़ा सा जीव भांडत पड़ला, ऐसा टेंशन खत्म हो गया। तो सोचा कि अभी हमारी जो गुस्ताखी हमने की वो उन्होंने वैसे ही स्वीकार कर ली है, तो हमको भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए उनको। लेकिन नंद बाबा के पास में बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन उतना ऐश्वर्य नहीं था जितना राधा रानी के पिताजी के पास था, तो उतने सुंदर मोती इनके पास नहीं थे। तो डिस्कस कर रहे हैं अभी कैसे करें, क्या भेजें उनके लिए, कृष्ण भगवान भी थे वहां पर, कहते हैं कि 1 लाख अति उत्कृष्ट मोतियों की मालाएं बनाकर भेजी थी उन्होंने। तो कृष्ण कहते हैं आप चिंता क्यों करते हो, मुझे दे दो कुछ मणि, मैं उसको खेत में बोऊंगा, उसकी खेती करूंगा और मूर्ति बनाऊंगा इससे बढ़िया, खाद वाद देके, गोबर खाद देके, तो चिंता मत करना, आप इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो वो जोर से हंसते हैं कि बालक है, इसको तो पता नहीं है, अरे खेती तो गेहूं और चावल की होती है और धान की होती है, तो थोड़ी मोती मोती तो उधर समुद्र में वो शिमले के अंदर मिलते हैं, उसको पता नहीं है, अभी बालक है ना वो, अज्ञानी है। तो नहीं मानते और वो अपने देते नहीं उसको। तो रात को कृष्ण भगवान जो है ना कुछ कुछ हजार एक लाख में से कुछ हजार माला चोर भी करते हैं, सब तोड़ देते हैं और सारे खेत में जाके बो देते हैं अपने, उसको गोबर खाद देते हैं, जल भी देते हैं। तो अगले दिन मैया देखती है तो कुछ मालाएं कम है इसके अंदर, तो उनको पता है कोई पुलिस को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाकर चोर तो घर में बैठा है ना, कोई कंप्लेंट जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन जांच करना जरूरी नहीं, सबको घर पे ही आके पुकारते किधर है मोती। तो मैया चोरी नहीं की है मैंने, मैं तो लिए उसको और लेके उसको बोए मैंने, और बो करे ये उतना दुख हुआ उनको, क्या बात कर रहे हो तुम, जाके मट्टी में बोए उसको, इतनी सारी व्यर्थ कर दी तुमने। नहीं नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यर्थ नहीं हुए, अभी आप खेत में चलो और देखो खेत भरा हुआ है मोतियों से। तो जोर से ठाका मार के हंसे, कल भी तो ऐसी बातें कर रहा था, आज तो उसके ऊपर एक शरारत भी कर दी, इतने सारे मोती बेकार कर दिए मट्टी में डालकर गोबर में, और कह रहा है कि मोती की खेती हो रही है, लेकिन जिद कर रहा है बालक, आओ आओ देखो देखो। तो बाल हट्ट की वजह से मैया और बाबा दोनों चले गए, और देखते तो क्या है, पूरा खेत है ना करोड़ों मोती से लहरा रहा है, चमक रहा है। तब नहीं हंसते, तुरंत बीनने लगते हैं। हाँ तभी उनको विचार नहीं आता कि बालक है और वो उसको पता नहीं है और उसको अज्ञान है, अपने आंखों से देख रहे हैं पूरा खेत मोतियों से लहरा रहा है, कितने सारे मोती लेते उससे करोड़ों गुना मोती बने, चमक रहे हैं सब, फटाफट बीन लेते हैं, बैलगाड़ी में भरते हैं और भेज देते हैं। तो वो जो मोती उन्होंने बोए थे ना, वो है वो मोती कुंड जहां पर आपको ले जा रहे हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, जो आपको हमारे कल्पना में नहीं है वो भगवान वास्तव में करके कर सकते हैं। जैसे कि किसी के मन में नहीं था कि भगवान अभी गिरिराज को उठाने वाले हैं, लोग तो कहें क्या बालक बात कर रहे हैं, जैसे आपका लड़के वो लड़की बोलेगी कि मैया मैं अभी ना नंदगांव के पर्वत को उठाऊंगी, तो आप क्या बोलेंगे, अरे बालिका है उसको क्या समझ में आता है। कृष्ण ने भी ऐसा ही बोला, मैं गिरिराज को उठाऊंगा, और बाद में उठाया। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो हमारी कल्पना के अंदर बैठता नहीं किधर भी, वो भगवान करके दिखाते हैं। तो कल्पना क्या बोलती है कि नहीं धान डालेंगे धान आएगा, लेकिन मोती बोने से मोती नहीं आएगा, ये हमको हमारा शास्त्र बताता है, लेकिन भगवान सारे शास्त्रों को फेल करके मोती बोकर मोती बना देते हैं। फिर वो वहां पहुंचते हैं, फिर राधा रानी उसमें से कुछ मोती लेती हैं और एक कुंड के पास उसको बोती हैं। राधा रानी तो ये शेर तो वो सवा शेर, हाँ इन्होंने मोती से मोती बनवाए, उन्होंने मोती से हीरे बनवाए, खेती किया मोती बोकर हीरे बनवाए, नाम क्या पड़ा रत्नकुंड, वो डवारा में है, उसके किनारे भगवान राधा रानी ने कृष्ण के भेजे हुए मोतियों की खेती की। तो ऐसा अद्भुत धाम है, यहाँ पर सब अद्भुत है, खाली हम अद्भुत नहीं है, बस इतना ही फर्क है, हम लोग नॉर्मल है और ऑर्डिनरी हैं, लेकिन इनके संग से अगर इनकी कृपा हुई तो आप सब भी अद्भुत बन सकते हो, अद्भुत चमत्कार ही नहीं अद्भुत भक्ति में बन सकते हो, उनके बन सकते हो, उनके आश्रय पे आश्रय प्राप्त कर सकते हो, इनकी शरण ले सकते हो और इस कुंड की जो शक्ति है पावन करने की वो प्राप्त कर सकते हो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।